लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमने दिल एक्सित नोस के चौथे अध्याय की शुरुआत की है जिसका शीर्षक है एक प्रेम जो हमें अपने को पेय स्वरूप देता है। हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में पवित्र हृदय के विषय में संत फ्रांसिस डी सेल्स, जिन्होंने निरंतर यीशु के खुले हृदय पर विचार मंथन किया जो हमें उनमें निवास करने को निमंत्रण देता है, जहां हम उनके संग अपने व्यक्तिगत प्रेमपूर्ण संबंध को पाते हैं जो हमारे लिए उनके जीवन के रहस्य को प्रकाशित करता है, चर्चा की। आज हम पवित्र हृदय के संबंध में अपने को संत मार्गरेट मेरी अलकोका के विचारों से अवलोकित करेंगे जिसे हम प्रेम की एक घोषणा स्वरूप पाते हैं। श्रोताओं, इस सालेशियन आध्यात्मिकता के लाभकारी प्रभाव के तहत 17वीं शताब्दी के अंत में पेरे ले मोनलियन की घटनाएं घटित हुई। संत मार्गरेट मेरी अलकोका ने दिसंबर 1673 के अंत से लेकर जून 1675 के बीच तक मसीह के दर्शनों की एक उल्लेखनीय श्रृंखलाओं की चर्चा की। इन सारी चीजों में प्रेम की घोषणा को हम एक मूलभूत तथ्य स्वरूप पाते हैं जो प्रथम दर्शन को खास बनाता है। यीशु कहते हैं, मेरा दिव्य हृदय मानव के लिए प्रेम से इतना अधिक धधकता है और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कि यह करुणा की उस ज्वाला को अपने में समाहित नहीं कर सकता है। यह तुम्हारे द्वारा उन्हें उड़ेलते हुए प्रकट करे जिससे यह इसके मूल्यवान निधियों द्वारा लोगों के जीवन को समृद्ध करे जिसे मैंने अब तुम्हारे लिए प्रकट किया है। संत मेरी मार्गरेट की व्याख्या अपने में इतनी शक्तिशाली और प्रभावकारी है। उन्होंने मुझे अपने प्रेम की आश्चर्यचकित करने वाली बातों को प्रकट किया और पवित्र हृदय के अवर्णनीय रहस्यों को जिसे उन्होंने मुझसे छिपाकर अब तक गुप्त रखा था उसे उन्होंने मुझे पहली बार प्रकट किया एक ऐसे प्रभावकारी और संवेदनशील रूप में कि वे मेरे लिए संदेह करने हेतु कोई भी जगह नहीं छोड़ते हैं। इन दर्शनों के परिणाम स्वरूप जो सांत्वना के संदेश मुझे दोहराते हुए यह कहती है, उन्होंने मुझे अपने शुद्ध प्रेम के अवर्णनीय चमत्कारों से अवगत कराया तथा बताया कि प्रेम ने उन्हें मानव जाति से किस चरम सीमा तक प्रेम करने के लिए प्रेरित किया। संत मार्गरेट मेरी द्वारा हमें प्रदान किए गए यीशु ख्रीस्त के प्रेम का यह शक्तिशाली एहसास हमें उनके साथ अधिक एकता में बने रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। हम उनके हर आध्यात्मिक अनुभव को अपने लिए स्वीकारने और उसे ग्रहण करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकते हैं जिसमें जैसा कि बहुधा होता है ईश्वर का मानव के संग व्यक्तिगत मिलन उससे संबंधित इच्छाओं बातों और आंतरिक स्वरूपों के संग संयुक्त करता है। इन अनुभवों को चाहिए कि हम उन्हें सुसमाचार के प्रकाश में और कलिस्स के आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार परिभाषित करें, जो भी कि हम अपने में इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे बहुत से भाई बहनों में ये अच्छी चीजों को पूरा करते हैं। इस भांति हम उन अनुभवों में विश्वास और प्रेम के साथ उन बातों को पहचानते हैं जो हमें पवित्र आत्मा के उपहारों की अनुभूति दिलाती है। किसी भी व्यक्तिगत विवरण से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए हमें दिया गया संदेश का मूलता है, जिसे संत मार्गरेट मेरी द्वारा सुने गए शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है। यह वह हृदय है जिसने मनुष्यों से इतना प्रेम किया है कि उन्होंने अपना प्रेम दिखाने के लिए उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि खुद को खाली करने और पूर्ण रूपेण बलि अर्पित करने को तैयार हो गया। श्रोताओं, यह दर्शन इस भांति हमें ईश्वर से अपने मिलन में बढ़ने हेतु निमंत्रण देता है, जहां हम अपने विश्वास को उनके प्रेम में पूरी तरह अर्पित करने हेतु बुलाए जाते हैं, तब तक जब तक हम पूर्ण रूपेण और निश्चित रूप में उनके संग अपने संबंध को नहीं पाते हैं। यह हमारे लिए जरूरी है कि यीशु का दिव्य हृदय किसी भी रूप में हमारे हृदय में परिवर्तन लाता है, जिससे केवल वे हमारे जीवन में निवास करते, हम में और हमारे लिए अपनी योजना के अनुरूप कार्य करते हैं। हम पूर्ण रूपेण और बिना किसी अवरोध के अपनी ओर से कार्य करते हैं और अंततः उनका प्रेम, उनके विचार और चाह हमारे अपने बनते हैं, विशेषकर उनका स्नेह, जिससे वे स्वयं और हमारे लिए प्रेम किए जाते हों। और इस भांति यह प्रेममय हृदय सारी चीजों में हमारा बनता है और हम संत पौलुस की भांति कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में नहीं जीते हैं, लेकिन ये वे हैं जो हमारे जीवन में जीते हैं। श्रोताओं, अपने प्रथम संदेश में संत मार्गरेट मेरी ने इस बात को पाया जो एक निमंत्रण के रूप में उत्साह और प्रेममय स्वरूप में अभिव्यक्त किया गया था। उसने मेरे हृदय की मांग की, जिसे मैंने ले जाने को कहा, वह उसे ले गए और उन्होंने मुझे स्वयं अपने आराध्य हृदय में स्थापित किया, जहां उसने मुझे अपना एक छोटा सा अणु बनाया जो उसकी अपनी अग्नि भट्ठी में भस्म हो जाने जैसे दिखाई दी। श्रोताओं, एक दूसरी जगह जहां हम उस बात को देखते हैं कि वे जो हमें अपने को देते हैं, वे पुनर्जीवित और महिमान्वित ख्रीस्त हैं, जो जीवन और ज्योति से पूर्ण हैं। यदि वास्तव में विभिन्न परिस्थितियों में उन्होंने हमें अपने दुख भोग के बारे में, जिसे उन्होंने हमारे खातिर सहा, जिसे हमारी कृतघ्नता का सामना करना पड़ता है, हम यहाँ यह देखते हैं कि यह उनके लहू और दुखदायी घावों का स्वरूप नहीं था, बल्कि वे जीवनदाता ईश्वर की ज्योति और आग थे। दुख भोग के घाव ओझल नहीं हुए हैं, बल्कि वे अपने में परिणत हो गए हैं। यहाँ हम पास का रहस्य को उनके वैभव में देखते हैं। एक बार जब पवित्र परम प्रसाद का आवरण किया गया, यीशु अपनी महती महिमा में अपने पांच घावों के साथ प्रकट हुए। यह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बहुत से सूर्यों की रोशनी उनकी दिव्य मानवता से चमक रही हो, लेकिन उससे भी बढ़कर उनके आराध्य वृक्ष स्थल से, जो कि एक धधकती भट्ठी की भांति दिखाई दे रहा था, अपने परिधान को अलग करते हुए उसने अपने अति प्रेममय और प्रेम के योग्य हृदय को दिखलाया, जहां से सजीव आग की लपटें निकल रही थीं। तब मुझे उनके शुद्ध प्रेम के अवर्णनीय चमत्कारों का पता चला, जिसके द्वारा वे मनुष्यों से अत्यंत प्रेम करते हैं, फिर भी वे उन्हें केवल कृतघ्नता और उदासीन ही पाते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आगामी कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों ने नए पोप के चुनाव की प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह सोमवार 5 मई को शाम 5:30 बजे प्रेरितिक आवास के पौलायन चैपल में आगामी कॉन्क्लेव में योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सम्पन्न हुए। जैसा कि 22 फरवरी 1996 को पोप जॉन पॉल द्वितीय द्वारा प्रख्यापित प्रेरितिक संविधान यूनिवर्सी डोमिनिची ग्रेजिस द्वारा निर्धारित किया गया है। पौत्र रोमी कलीसिया के कमरलेंगो कार्डिनल केविन जोसेफ फारेल ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। दल में कार्डिनल मंडल के सचिव परमधम पीठ धर्म विधिक समारोहों के प्रमुख समारोहों के साथ पेपल मास्टर कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करने वाले कार्डिनल द्वारा अपनी सहायता के लिए चुना गया सदस्य पोप की सक्रिस्टी के लिए नियुक्त 2 अगुस्टीनियन धम्म संघी पाप स्वीकार के लिए विभिन्न भाषाओं के धम्म संघी मेडिकल डॉक्टर एवं नर्स प्रेरितिक आवास के लिफ्ट ऑपरेटर भोजन सेवाओं एवं सफाई के लिए जिम्मेदार कर्मचारी साथ ही फूल वाले तकनीकी सेवा कर्मचारी और संत माता आवास से प्रेरितिक आवास तक मतदाताओं को ले जाने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी सिस्टीन चैपल के पास निगरानी के लिए नियुक्त परमधम पीठ स्विस गार्ड के कर्नल और एक मेजर वैटिकन सिटी स्टेट के सुरक्षा सेवाओं और नागरिक सुरक्षा के निदेशक और उनके कुछ सहयोगियों के साथ प्रत्येक व्यक्ति को शपथ के महत्व के बारे निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने कार्डिनल फेरेल और 2 प्रेरितिक प्रोटो नोटरीज की उपस्थिति में व्यक्तिगत रूप से निर्धारित सूत्र का उच्चारण एवं हस्ताक्षर किया। शपथ में पोप के चुनाव के लिए मतदान एवं जांच से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित सभी मामलों के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने की गंभीर प्रतिज्ञा शामिल है, जिसमें एक स्थायी दायित्व है जब तक कि नवनिर्वाचित पोप या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया जाए। यह ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरणों के निषेध की भी पुष्टि करता है। शपथ ग्रहण समारोह पोप चुनाव प्रक्रिया की गोपनीयता एवं पौत्रता के प्रति कलीसिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि सभी सहायक कर्मचारी कॉन्क्लेव की अखंडता को बनाए रखें। कार्डिनलों की 11वीं आम सभा में प्रवासन सिनोडालिटी और एकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। सोमवार दोपहर 5 मई 2025 को 11वीं आम सभा में 132 कार्डिनल निर्वाचकों सहित कुल 170 कार्डिनलों ने भाग लिया। सभा की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी के अनुसार सभा के दौरान लगभग 20 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें कई प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, जैसे कलीसिया और समाज के भीतर जातिवाद, पलायन की परिस्थिति, उपहार के रूप में प्रवासी और प्रवासियों के विश्वास पर समर्थन करने का महत्व, चल रहे युद्ध और संघर्ष एवं उन देशों से संबंधित विषयों पर भी बातें हुई जहां से कार्डिनल आते हैं, विशेषकर एशिया एवं अफ्रीका। कार्डिनलों की नए पोप का समर्थन करने की प्रतिबद्धता एवं जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डाला गया। कार्डिनलों ने विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक जगत के साथ संवाद और संबंध निर्माण के परिप्रेक्ष्य में एक प्रेरित पोप की छवि को भी रेखांकित किया। आम सभा शाम 7 बजे समाप्त हुई। नाबालिगों की सुरक्षा के लिए गठित परमधम पीठे आयोग 7 मई को शुरू होने वाले कॉन्क्लेव से पहले कलीसिया के साथ प्रार्थना में एकजुट है। रोम के अगले धर्माध्यक्ष का चुनाव करने के लिए आगामी कॉन्क्लेव की तैयारी हेतु कार्डिनल मंडल के सदस्य रोम में एकत्रित हो रहे हैं। वहीं नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बने परमधम पीठे आयोग ने एक सार्वजनिक वक्तव्य एवं प्रार्थना के माध्यम से कार्डिनल निर्वाचकों के प्रति अपनी आध्यात्मिक सामीप्य और समर्थन व्यक्त किया है। पूरी कलीसिया में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम सौंपे गए आयोग ने इस क्षण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कहा कि वह पौत्र आत्मा के नेतृत्व में विवेक के लिए प्रार्थना करने में सार्वभौमिक कलीसिया के साथ है। बयान में कहा गया है कि हम पौत्र आत्मा द्वारा निर्देशित आत्मपरक के लिए ईश प्रजा के साथ अपनी आवाज मिलाते हैं और कलीसिया के भीतर दुर्व्यवहार से पीड़ित लोगों की पुकार को अपने साथ लाते हैं। कार्डिनल मंडल के समक्ष मौजूद गहन जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए आयोग ने कलीसिया के जीवन में कमजोर लोगों की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हम उन कार्डिनलों के लिए प्रार्थना करते हैं जो संत पेत्रुस के अगले उत्तराधिकारी को चुनने की गंभीर जिम्मेदारी उठाते हैं कि वे साहस, विनम्रता और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता से मार्गदर्शन प्राप्त करें। विश्वास और मध्यस्थता की भावना से आयोग ने बालक येसु के संरक्षक संत जोसेफ के माध्यम से एक विशेष प्रार्थना की, जिसमें उन्होंने निर्वाचकों पर दिव्य मार्गदर्शन का आह्वान किया। प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, आपके नाम पर एकत्रित कार्डिनलों पर अपनी पौत्र आत्मा भेज दे। जब वे प्रार्थना करते हुए संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी को पहचानने की कोशिश करेंगे। लुथेरन कलीसिया के धर्म गुरुओं ने पोप फ्रांसिस को सेतु निर्माता के रूप में सम्मानित किया। लुथेरन वर्ल्ड फेडरेशन के महासचिव ने दिवंगत पोप फ्रांसिस की एकता, समावेशिता और मेल मिलाप की विरासत पर विचार किया तथा उनके साक्ष्य को दुनिया भर के विश्वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बतलाया। जब विश्व पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक मना रहा है, ख्रिस्ती समुदाय के नेता उन्हें न केवल रोम के धर्माध्यक्ष के रूप में याद कर रहे हैं बल्कि एकता, संवाद और न्याय के अथक समर्थक के रूप में भी याद कर रहे हैं। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में लुथरन वर्ल्ड फेडरेशन की महासचिव और इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला रेवरेंड डॉक्टर एनी बर्गहट ने दिवंगत पोप को याद करते हुए कहा, मैंने हमेशा उन्हें बहुत ही सुलभ, बहुत ही चौकस और अत्यंत खुले विचारों वाला पाया है। उन्होंने कहा, उनकी विरासत कई लोगों के साथ रहेगी, इस संबंध में भी कि किस तरह उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया और किस तरह उन्होंने उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया। गजा के लोग भूख से मर रहे हैं और दुनिया उनकी अनदेखी कर रही है। गजा में कम से कम 57 फिलिस्तीनी भूख से मर गए हैं क्योंकि इसराइल द्वारा घेरे गए क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानवीय सहायता पर रोक लगातार बमबारी के बीच 3रे महीने भी जारी है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।